श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 10 श्लोक संख्या 17। प्राणेना आक्षिपता श्रुत त्रिट अंतरा जायते विभो पिपासतः जक्षतः च प्राक् मुखं निर्भिद्यत। प्राणिनाक्षिपताक्षत त्रिडन्तरा जायते विभुः पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यते। प्राङ्मुखः निरभिद्यत प्राणेन जीवनी शक्ति से आक्षिपता विचलित होकर क्षुत भूख। क्या लिखा इसमें? इसमें लिखा है भूख भूख स्पेलिंग मिस्टेक। दृट प्यास अंतरा भीतर से जायते उत्पन्न करती हैं विभो परमेश्वर की पिपासतः प्यास बुझाने के लिए इच्छुक जक्षतः खाने के लिए इच्छुक च तथा प्राक पहले मुखम मुंह निरभिद्यत प्रकट हुआ। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा विराट पुरुष द्वारा विचलित करने पर जीवनी शक्ति अर्थात प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा को की तो मुंह खुल गया। तात्पर्य जिस प्रकार से माता के गर्भ में जीवों के अंगों तथा ऐन्द्रिक अनुभूतियों का विकास होता है उसी प्रकार से समस्त जीवों में समष्टि रूप विराट पुरुष का भी विकास होता प्रतीत होता है। अतः समस्त सृजन कार्य का परम कारण निर्गुण या निश्चेष नहीं है। भगवान में भी समस्त प्रकार की कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों की इच्छाएं रहती हैं और इस तरह वे प्रत्येक व्यक्ति में घटित होती हैं। यह इच्छा या चेष्टा परम पुरुष का स्वभाव है क्योंकि वे समस्त मुखों की समष्टि हैं। अतः अलग अलग जीवात्माओं में मुख होता है। इसी प्रकार से अन्य इंद्रियां तथा उनके अंग भी होते हैं। यहां पर मुख समस्त इंद्रियों का प्रतीक है क्योंकि अन्यों पर भी यही नियम लागू होते हैं। विराट पुरुष द्वारा विचलित करने पर जीवनी शक्ति ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। भगवान सभी प्रश्नों का उत्तर है। यहीं से ही वो है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो यहाँ वर्णन चल रहा है कि किस प्रकार से भौतिक जगत में जो हम रूप देखते हैं उनकी क्रियाएं देखते हैं क्या वो किस तरह से सृजित हुई है। तो एक विचार है कि सब निश्चेष से प्रारंभ हुआ है, मैटर से प्रारंभ हुआ है, जड़ पदार्थ से प्रारंभ हुआ है सब कुछ। और भागवत विचार है कि ये सब जीवित व्यक्ति से प्रारंभ हुआ है। तो इन दोनों विचारों में कौन सा विचार मान्य है, इसके ऊपर चर्चा यहां पर चल रही है प्रभुपाद जी की तात्पर्यों के माध्यम से। तो भागवतम में यहां पर वर्णन है कि विराट पुरुष भगवान का इस भौतिक जगत में जो रूप है, भौतिक रूप, अर्थात ये पूरा जो सृजन है, सृष्टि है, इसको भगवान का शरीर माना जाए। और परमात्मा, इसके प्राण आत्मा मानी जाए, परमात्मा। तो उसकी उपमा है हर व्यक्तिगत आत्मा और उसके शरीर से। तो दो तरफ कंपैरिजन है कि हम अपने शरीर को समझ करके कैसे इस पूरे ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, ये एक तरीका है समझने का कि हम अपने को स्टडी करें और उसके माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड को स्टडी करें। क्योंकि हर एक जो जीव है वो एक पूरे ब्रह्मांड का ये एक छोटा सैंपल है। तो जैसे हम अपने को देखते हैं कि हमारे अंदर दो चीजें हैं, एक प्राण यानी कि एक जीव, जीवित शक्ति है, जीवनी शक्ति है, और ऐसे पदार्थ हैं जिसमें जीवन नहीं है। इन दो चीजों का मिलन, दोनों चीजों का जोड़ है हर एक व्यक्ति। तो कैसे एक व्यक्ति का विकास, अलग अलग इंद्रियों का विकास कैसे होता है, तो एक जीवित मां और एक जीवित पिता, वहां से प्रारंभ होता है। अगर जीवित मां और जीवित पिता नहीं है तो सृजन का कोई चांस नहीं है, बच्चे का होने का कोई चांस नहीं है। मृत देह से जीवन कहीं उत्पन्न नहीं होता है। हम अभी उपमा लेके चल रहे हैं, अपने को देख करके फिर इस ब्रह्मांड को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि किसी भी बच्चे के लिए एक मां और एक बाप चाहिए, जीवित व्यक्ति चाहिए। तो जब जीवित मां और जीवित पिता होते हैं तो पिता के वीर्य और मां का जो अंड होता है उनके मिलन से एक प्रारंभ में पांचवें दिन पर एक बबूले के समान आकार का एक गोल, बबूले के समान ऐसा एक बनता है। उसके बाद दसवें दिन पर वो बेर के समान होता है। उसके बाद एक महीने पर सिर प्रकट होता है। उसके बाद दूसरे महीने पर फिर हाथ प्रकट होते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग जो छिद्र हैं वो प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इंद्रियां विकसित होती हैं। फिर उसके बाद सातवें महीने के अंदर, छठे पांचवे सातवें नॉट एग्जैक्टली, उसके अंदर चेतना का विकास होता है, सातवें चेतना का विकास होता है। और फिर धीरे धीरे सब अनुभूतियां विकसित होती हैं, परसेप्शन, भूख शुरू होती है, प्यास शुरू होती है, ये सब जो चेतना के जो अंग हैं ये सब विकसित होते हैं। और फिर नवे महीने पर जब बच्चा अंदर बहुत अधिक मुश्किल अनुभव करता है, कष्ट अनुभव करता है और बाहर जाने की इच्छा प्रकट होती है, इससे निकलने की इच्छा प्रकट होती है, तब वो बाहर आता है। तो इसी प्रकार से भागवत में इसकी उपमा देकर कहा गया है कि इसी प्रकार से यदि हम पूरे संसार के अंदर देखें तो जो ये मूल रूप से भूख है, प्यास है, ये सब जो इंद्रियां सृजित हुई हैं, क्योंकि जो ये 24 तत्व हैं जिसका ये भौतिक जगत बना है उसके अंदर हम देखते हैं, एक तो पंचभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, फिर पांच इंद्रियां, फिर पांच मतलब कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि, अहंकार, फिर प्रधान, इस प्रकार से सब मिला करके इस भौतिक जगत इसका बना है। तो क्रमिक रूप से कैसे कैसे इनका विकास हुआ, तो एक तरफ विचार है वैज्ञानिकों का विचार कि सब कुछ अपने आप प्रारंभ में जड़ पदार्थ से प्रारंभ हुआ और उसी में ही अपने आप जड़ पदार्थों ने भौतिक नियमों के, रासायनिक नियमों के अनुसार उनमें परिवर्तन हुए और धीरे धीरे अपने आप ये अनुभूतियां उत्पन्न हुई कि भूख, प्यास, इच्छा, ये सब अनुभूतियां अपने आप रासायनिक मेलजोल से अपने आप उत्पन्न हुए। लेकिन हमारा जो ऑब्जर्वेशन है कि हर व्यक्ति के लिए प्रारंभ होता है एक माँ बाप से, तो भगवान इसी प्रकार से भगवद गीता में कहते हैं कि उसी प्रकार से इस भौतिक जगत का जो प्रारंभ है, यहाँ पर जो जीव के जो प्राकट्य होता है उसके लिए एक माँ होती है और इसके लिए पिता होता है। अहम ब्रह्म महद्योनिर तस्मिन गर्भम ददाम्यहम, जो ये ब्रह्म महद्योनिर, जैसे माँ उसको योनि कहते हैं, इसी प्रकार से महद्योनिर महान योनि ये प्रकृति है, तस्मिन गर्भम ददाम्यहम उसमें मैं उसको गर्भित करता हूं। तो ये प्रपोजिशन ज्यादा लॉजिकल है क्योंकि हमारे अनुभव के अनुसार है, उससे कि जीव की जो प्रारंभ है, इंद्रियों का जो प्रारंभ, इंद्रियों का जो बनना है और जो इच्छाओं का बनना है और जो भूख प्यास का बनना है, उसका प्रारंभ एक जड़ पदार्थों से हुआ होगा क्योंकि उसका कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऑब्जर्वेशन हमारे पास है कि हम हर जीव के लिए प्रारंभ एक जीव से होना चाहिए, उसके जीवित एक माता पिता है जिनसे ये प्रारंभ होना चाहिए। तो इस भौतिक ब्रह्मांड में जो इंद्रियां बनी, यूनिवर्सल स्केल पर जो इंद्रियां बनी, भूख और प्यास जो सृजित हुआ, तो उसके लिए इसी प्रकार से एक विराट रूप, जो विराट रूप के द्वारा ये सब प्रकट हुए, अपने आप से नहीं हुए, अर्थात भगवान प्रविष्ट होते हैं इस भौतिक जो प्रकृति है, जो एक शरीर के समान है, जैसे आत्मा एक एक शरीर में प्रविष्ट होता है, ऐसे ही विशाल जो ये शरीर है पूरा ब्रह्मांड, इसमें भगवान प्रकट होते हैं, भगवान एंटर करते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं। हर एक शरीर के अंदर एक आत्मा, और उसी प्रकार से इस पूरे विराट रूप के अंदर की जो आत्मा है वो है परमात्मा, जिनके एंटर होने से ही ये जो भौतिक तत्व हैं वो आपस में क्रियाशील होते हैं। जैसे इस भौतिक शरीर के अंदर ये भौतिक तत्वों का आपस में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है जब जीव से शुरू होता है, जब जीव उसमें प्रविष्ट होता है, और तब तक रहता है जब तक जीव इसमें रहता है। जैसे ही जीव निकलता है तो ये शरीर की जो क्रियाएं हैं वो बंद हो जाती हैं। तो उसी प्रकार से जो ये विराट शरीर है, ये पूरा ब्रह्मांड, इसकी जो तत्व हैं उनके अंदर क्रियाओं का प्रारंभ शास्त्रों के अनुसार, भागवतम के अनुसार होता है जब भगवान उसके अंदर प्रविष्ट होते हैं, महाविष्णु के रूप में पहले, उसके बाद गर्भोदक का साई विष्णु, और उसके बाद शिवोदक का साई विष्णु, ये तीन अलग अलग स्तरों पर भगवान प्रविष्ट होते हैं इस भौतिक प्रकृति के अंदर, और तभी ये भौतिक तत्व अपने आप में, तभी ये भौतिक तत्व आपस में रिएक्शन करना प्रारंभ करते हैं। तो यहां पर वर्णन है कि जीवनी शक्ति ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया और तब विराट पुरुष ने पीने और खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। तो ये जो भूख और प्यास है, ये प्राण जो जीवनी शक्ति है, प्राण उसका सिम्टम है। जहां पर भी जीवन होगा, जहां पर भी जीवनी शक्ति होगी, वहां पर ये भूख और प्यास होगा। और जब भूख और प्यास है तो उसके लिए, उसको मिटाने के लिए उसके ऑब्जेक्ट है, पानी है और खाना है। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब बाई चांस हुआ कि अपने आप से भौतिक तत्वों के द्वारा हुआ कि हमें भूख लगती है और खाना है। लेकिन अभी आप सोचें कि एक आदमी की इच्छा है, प्रोपाधान देते हैं कि हम कभी जाते हैं किसी फाइव स्टार होटल में, तो हम देखते हैं कि जो भी एक फर्स्ट क्लास, एक बहुत अमीर व्यक्ति को एक जो भी आवश्यकताएं होती हैं रुकने के लिए, वो सब उस होटल में होती हैं। कमरे में एसी लगा हुआ है तो वो जाएगा, उस देखा अरे एसी है, एसी का वहां स्विच है, स्विच को ऑन किया, रूम बहुत साफ है, बाथरूम में जाएगा, टॉयलेट में जाएगा, वहां पर गर्म पानी का अरेंजमेंट है, सर्दी है तो गर्म पानी है, वो सब अरेंजमेंट है। तो इस तरह से वो देखता है कि रूम के अंदर वो सब फैसिलिटी हैं जो एक अमीर आदमी जिसकी कल्पना करता है, जिसको चाहता है, वो सब अरेंज है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो जानता है कि एक अमीर व्यक्ति को क्या क्या चाहिए, उसने सोच करके सब जगह पर उसका प्रावधान किया है। रूम के अंदर टेलीफोन है बुलाने के लिए, कुछ आवश्यकता के लिए, ऐसे सब अरेंजमेंट है। तो एक अमीर आदमी को जो जो इच्छा होती है, जेंटलमैन को जो जो इच्छा होती है, उसकी इच्छा के अनुसार जो जो आवश्यकता है वो सब का प्रावधान वहां किया है। तो अगर हम इसको दूसरे तरीके सोचें कि बाई चांस हमारी ऐसी इच्छा हुई कि हमें गर्म पानी चाहिए, और अपने आप ऐसा इवोल्यूशन हुआ कि धीरे धीरे पहले एक बाथरूम था जहां पर गीजर नहीं था, और फिर बहुत समय रहते रहते अपने आप ऐसा हुआ कि एक ऐसा बाथरूम बना जिसमें गीजर था, एक ऐसा रूम बना पहले जिसमें कि कोई एसी नहीं था, फिर धीरे धीरे ऐसा रूम अपने आप इवॉल्व हो गया जिसमें कि एसी था। तो एक्चुअली ये जो विचार है इसका कोई तर्कसंगत नहीं बैठता है। लॉजिकल ये है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि एक लो क्लास आदमी को या एक सामान्य व्यक्ति को क्या आवश्यकताएं हैं, एक हाई क्लास आदमी क्या आवश्यकताएं हैं, इसलिए उसने अलग अलग प्रकार के होटल्स बनाए हैं। एक सामान्य व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं कि उसको रुकने के लिए, लेटने के लिए एक जगह चाहिए, सामान्य जगह चाहिए, उसको नहाने के लिए पानी चाहिए, तो वहां पर उतनी आवश्यकताएं हैं। लेकिन जो आदमी हाई स्टैंडर्ड लिविंग है जिसका, उसकी ये आवश्यकताएं हैं। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने इस प्रकार से अलग अलग चीजें बनाई हैं। तो उसी प्रकार से अलग अलग योनियां हैं, जानवर भी हैं, मनुष्य भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं। तो एक विचार तो है कि ये पहले एक सेल था, उसमें से अपने आप सिंपल ऑर्गेनिज्म बने, और फिर वो धीरे धीरे अपने आप उसमें से कुछ जटिल बन गए, उसमें से फिर अपने आप कुछ और जटिल बन गए, और फिर और जटिल, और ऐसे करके एक बहुत जटिल मनुष्य बन गया। और ये जो भूख उत्पन्न हुई ये भी अपने आप हुई, और फिर भूख के लिए खाना भी था वो भी अपने आप उत्पन्न हुआ। लेकिन दूसरा विचार है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति देख रहा है कि जो एक एक इंडिविजुअल आत्मा है, जीवनी शक्ति है, उसकी क्या क्या इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं के अनुसार उसने अलग अलग शरीरों का निर्माण किया है कि जिसको मल खाने की इच्छा है उसके लिए सुअर की योनि है, जिसके लिए मांस खाने की इच्छा है उसके लिए शेर की योनि है, जिसके लिए वनस्पति और हलवा खाने की इच्छा है उसके लिए मनुष्य की योनि है, जिसको रहने के लिए कहीं भी जो रह सकता है उसके लिए वो सड़क पर रह सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को रहने की तो उसके लिए घर इत्यादि उसको बुद्धि दी है, कैसे घर बनाना है, ये कैसे अनुगाना है, इसकी सब प्रबंध किया है। तो कौन सा प्रपोजिशन ज्यादा लॉजिकल है? न केवल लॉजिकल है बल्कि पहले वाले प्रपोजिशन की संभावना भी नहीं है, वो बिल्कुल अटपटा है। कि तत्व अपने आप से कार्य करते हैं, तत्व अपने आप से जटिल होते हैं। और वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं कि जो ये जटिलताएं उत्पन्न होती हैं उसके पीछे जो नियम है वो अत्यंत सरल है। वो क्या कहते हैं, जटिलताएं उत्पन्न होती हैं लेकिन जो उनको नियंत्रित करने वाले जो नियम है वो अत्यंत सरल भौतिक रासायनिक नियम है। इसीलिए ये पूरी सृष्टि की जो प्रारंभ है वो बहुत सरल सिद्धांतों से हुआ है। इतना सरल कि हम इस पूरी सृष्टि को एक इक्वेशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक मैथमेटिक्स की एक इक्वेशन से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे कैसे हुआ है। तो फिजिकल लॉज, केमिकल लॉज बहुत सरल है। सरल का अर्थ ये है कि वो केवल फिजिकल स्तर पर, केमिकल स्तर पर एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, वो केवल फिजिकल लेवल पर एक्सप्लेन किया जाते हैं, ये सरल का मतलब है। अर्थात अगर हम रासायनिक या भौतिक स्तर पर इस भौतिक जगत के नियमों को अध्ययन करें, उन्हीं नियमों से संभव है सभी प्रकार की जटिलताएं जो हम अनुभव करते हैं इस भौतिक जगत में, उन सभी को एक्सप्लेन करना संभव है उन फिजिकल केमिकल लॉज के द्वारा। लेकिन कोई भी नियम के अंतर्गत जब तक वो इनबिल्ट कॉम्प्लिकेशंस की कॉम्प्लिकेशन जो उसकी रचना है वो इनबिल्ट यदि उन नियमों के अंदर नहीं है, तब तक वो कोई जटिल चीज अपने आप सिंपल लॉज से नहीं आती। जैसे एक उदाहरण है, ये एक टेप रिकॉर्ड रिकॉर्डर बनाना है, ये एक डिवाइस है। जो इसको बनाने वाला है जब तक उसके मन के अंदर ये परिकल्पना नहीं है कि वो क्या बनाने जा रहा है, उसे एक रिकॉर्डर बनाना है, उस रिकॉर्डर को बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होंगी, उसका हार्डवेयर के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होंगी। जिसने ये बनाया तो रिकॉर्डर बहुत बड़े बड़े भी आते थे पहले, प्रभुपाद जी के टाइम में वो रील रिकॉर्डर ऐसे बड़ा लेकर घूमते थे, और अभी ये इतना छोटा सा रिकॉर्डर है। तो जिस व्यक्ति ने इसको बनाया है तो उसने पहले से कल्पना की कि मुझे एक बहुत लाइट वेट छोटा हैंडी एक रिकॉर्डर बनाना है, जिसका कीमत, जो कॉस्ट निकलेगा, जो मैं मटेरियल यूज करूंगा उसका कॉस्ट इतना होना चाहिए कि वो इकोनॉमिकली वायबल हो, लोग उसको खरीद सकें, जो उसका फंक्शन है उसके अनुसार वो वायबल होना चाहिए। फंक्शन रिकॉर्ड करने का है और उसका कीमत करोड़ों में हो तो फिर इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा, तो वैसे भी नहीं चलेगा। तो ऐसे अनेक चीजों से सोची, पहले से सोच करके चले। ये सोचने के पश्चात उसने धीरे 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 एक एक अलग अलग इंडिविजुअल पार्ट को बनाया, उसका हार्डवेयर कहीं बनाया, सॉफ्टवेयर कहीं बना, और फिर उसको सम्मिलित किया। अर्थात प्रारंभ से ही, इस इंस्ट्रूमेंट के बनने के प्रारंभ से ही अनेक चीजें जो जो व्यक्ति है उसके अंदर क्षमता थी ये सब विचार करने की, कि ऐसा उसका इस कारण से बनाऊंगा, उसकी ये चीजें होनी चाहिए, उसमें ये गुण होने चाहिए, पहले से इसके अंदर शक्ति थी इन सब चीजों को विचार करने की, तभी ये संभव हुआ ऐसा बनना। यदि ये केवल लोहा और कुछ सॉफ्टवेयर और कुछ प्लास्टिक यदि अपने आप पड़ा हुआ है जिसके अंदर जो बिल्कुल सिंपल नियम चल रहा है कि नियम क्या है कि जब एक हार्ड मेटल किसी चीज पर पड़ता है तो उसमें कुछ वो नीचे की तरफ गिरता है, जैसे ग्रेविटेशन लॉ, तो सिंपल नियम है कि कोई भी चीज जो है वो पृथ्वी की तरफ नीचे गिरती है। तो यदि हम ऐसे सिंपल नियमों से इसको एक्सप्लेन करना जाएं इसकी फॉर्मेशन को, तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं हम कि प्लास्टिक, एक्चुअली प्लास्टिक बना कैसे, स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम है। लोहा इस फॉर्म में आया कैसे, लोहा तो जमीन में मिला होता है, ओर्स होते हैं उसकी, तो हम क्या कह रहे हैं कि ओर के अंदर लोहा पड़ा हुआ है, उधर कुछ प्लास्टिक के जो केमिकल्स हैं वो कहीं अपनी अपनी जगह अलग हैं, और वो अपने आप कुछ फिजिकल लॉज हुए, फिजिकल नियम उसके ऊपर लगे कि भाई बहुत समय में गर्मी पड़ रही है, कुछ ऋतुएं आ रही हैं, उसकी वजह से वियर एंड टियर हो रहा है, ये सिंपल लॉज हैं, और ऐसे करके अपने आप से ये लोहा मिल गया, प्लास्टिक आपस में मिल गया, और सॉफ्टवेयर मिल गया, एक्चुअली इसका कोई सेंस भी नहीं निकलता है जो हम बात कर रहे हैं, करेक्ट? कोई व्यक्ति सुने बोले क्या ये पागलपन जैसा लगता है। तो ये बिल्कुल इलॉजिकल है सोचना कि सिंपल फिजिकल लॉज के अंदर ये कॉम्प्लिकेटेड चीज कैसे डेवलप हुई, सिंपल लॉज से कॉम्प्लिकेटेड चीज कैसे डेवलप हुई, संभव नहीं। तो फिजिकल लॉज प्लस कॉम्प्लिकेशन कैन गिव राइज टू दिस कॉम्प्लिकेटेड मशीन। मतलब फिजिकल लॉज प्लस एन इंटेलिजेंट मैन, एक इंजीनियर जो जानता है कि फिजिकल लॉज क्या है, ओके ये नियम क्या है, रिकॉर्डिंग के नियम क्या है, उसके लिए क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, ही नोज, वो जानता है कि ये नियम क्या है। लेकिन उसकी बुद्धि है जो उसको मिला सकती है, जो डायरेक्ट कर सकती है, इन दो के मिश्रण से ये मशीन बनी। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति इसके पीछे नहीं होता तो केवल सिंपल लॉज से वो संभव नहीं था। तो उसी लॉजिक को हम एक्स्ट्रापोलेट करें, आगे बढ़ाएं, तो ये जो सृष्टि है जो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इस रिकॉर्डर से, बहुत बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड है, तो सिंपल लॉजिक है कि वही ऐसा ही और एक कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन बीइंग, कॉम्प्लिकेटेड मींस जो फिजिकल लॉज के बियॉन्ड हो, जो मनुष्य है, मनुष्य का चिंतन इत्यादि वो फिजिकल लॉज के बियॉन्ड है, वो फिजिकल लॉज के अंतर्गत नहीं आता है, इच्छा करना, बुद्धि लगाना, ये सब फिजिकल लॉज के अंदर नहीं आता, इट्स बियॉन्ड। तो वैसा ही एक कॉम्प्लिकेटेड लॉज, यानी कि एक जीवित व्यक्ति चाहिए इस भौतिक सृष्टि के निर्माण। तो फिजिकल लॉज काम करते हैं, उसमें मना ही नहीं है, लेकिन वो फिजिकल लॉज को डायरेक्ट करने वाला, उसको यूज करने वाला एक बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए इस कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी, इस कॉम्प्लिकेटेड यूनिवर्स को बनाने के लिए। तो यही विचार यहां पर प्रस्तुत किया गया है कि एक विराट पुरुष है, जैसे हम एक पुरुष हैं, ऐसे एक विराट पुरुष है, एक सुप्रीम पर्सन है, जिसके द्वारा विचलित करने पर, विचलित जैसे ये जो मेटल बना है इसको विचलित किया गया, एक जगह से आयरन निकाला गया, एक जगह से प्लास्टिक निकाला गया, इसको विचलित किया गया, मीन्स इसको ट्रांसफॉर्म किया गया। तो ऐसे ही विराट पुरुष इन तत्वों को विचलित करते हैं, अर्थात अपनी शक्ति उसमें लगाते हैं। जब वो जीवनी शक्ति, जब वो लिविंग फोर्स उस जड़ तत्वों के ऊपर एक्ट करती है, तब उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जड़ पदार्थ एक रूप लेते हैं, एक पर्पस देते हैं, और उसके अंदर एक प्रोग्राम बनता है। इस प्रकार से डायरेक्शन के माध्यम से जो जड़ पदार्थ हैं और जो जड़ नियम हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। केवल अपने आप में जड़ पदार्थ कभी भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं जो हमारे अनुभव में है और जिसको यहां बताया गया। तो भूख प्यास लगी तो साथ साथ बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा भाई भूख प्यास लगेगी, उसके निवारण के लिए खाना चाहिए, उसके निवारण के लिए पानी चाहिए, तो पानी बनाया गया, खाना बनाया गया। ऐसा नहीं कि अपने आप भूख प्यास लग गई, अपने आप खाना बन गया। भूख प्यास लगी इसलिए, जब भूख प्यास लगती है तो पानी भी है, यानी ये बुद्धि मानता है कि हमें ठंड लग रही है, ठंड में गर्म पानी चाहिए तो गीजर है। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने सोचा है कि भाई ठंड में ठंड लगेगी इसलिए गीजर लगाऊं, ऐसा नहीं कि अपने आप ठंड लगी अपने आप गीजर बन गया, बाई चांस नहीं है। ठंड लगेगी, बुद्धिमान व्यक्ति ने सोचा इसलिए गीजर का इंतजाम किया, भाई गीजर चाहिए। तो उसी प्रकार से जीव की जो भौतिक जो शरीर है उसकी जो आवश्यकताएं हैं कि भाई इस शरीर को खाने के लिए चाहिए, उसके लिए भूख चाहिए, अब भूख के निवारण के लिए खाना चाहिए। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने शरीर जो बनाया उसके अंतर्गत जो उसकी आवश्यकताएं उसको मेंटेन करने के लिए उसको बनाया, और उसके साथ साथ वो पदार्थ बनाए जिनसे वो आवश्यकताएं पूरी होंगी। इस प्रकार से अलग अलग योनियां बनी, अलग अलग शरीर, और उन शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सब पदार्थ बने। इसलिए हम देखते हैं कि हर शरीर की अपनी अलग अलग आवश्यकताएं हैं, और वो सभी की आवश्यकताएं इस भौतिक जगत में। इसलिए ईशोपनिषद में क्या कहा गया है, पूर्णमदः, ये भगवान का जो भौतिक सृष्टि ये भी पूर्णम है, ये पूर्णात् पूर्णम अवशिष्यते, एक पूर्ण से ही पूर्ण बना है। इस भौतिक जगत के अंदर जो जीव आते हैं उन सबकी जो भी इच्छाएं हैं उन सबको पूरा करने का समस्त प्रावधान इस भौतिक जगत में बनाया है, तो वो पूर्ण है, ये सृष्टि अपने आप में पूर्ण है। लेकिन वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि ये पूर्ण है लेकिन इसका उद्गम अपूर्ण है, ये है पूर्ण और इसका जो ओरिजिन है वो नथिंग, ये सब नथिंग में से आया है, बिना किसी चीज में से नहीं आया। तो पूर्णम पूर्णम में से आता है, अपने आप अपूर्ण में से या जिस जो है ही नहीं उसमें से कैसे पूर्ण आ सकता है, इसका कोई तर्क नहीं है। पूर्ण में से पूर्ण आ सकता है, अपूर्ण में से कैसे पूर्ण आ सकता है, अपूर्ण में से कैसे पूर्ण आ सकता है। तो इसलिए ईशु परिषद कहती है कि नहीं, पूर्ण है और उसमें से भौतिक जगत पूर्ण इस प्रकार से प्रकट हुआ है। तो ये विचार यहां पर चल रहा है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, कोई कमेंट?
मटेरियल चीज से मटेरियल चीज में एक जीवित आदमी से और एक जीवित पुरुष से मिलकर संबंध पैदा होते, लेकिन कोई मरा वाला कोई आदमी से नहीं। लेकिन अभी विज्ञानी साइंटिस्ट को ऐसे किया था, मर गया जिससे पूरा जील लेंगे चीज ले ले मिक्स करके
प्रयास कर रहा है कि किया
हो गया।
आपने बोला प्रयास किया हो गया, तो कितने सारे आदमी बने हैं, क्या काम कर रहे हैं वो लोग? ओ टेस्ट ट्यूब बेबीज की बात कर रहे हैं, तो मृत आदमी के उसमें से नहीं लिया, एक जीवित व्यक्ति और वो तो क्या
और भी आएगा
नहीं
गया।
देखिए
मिलकर एक दूसरा
तो वो आदमी मर गया, उसको क्यों ले रहे हैं? मट्टी में से लो ना आदमी को, आदमी को क्यों ले रहे हो आप? आपको तो रसायन चाहिए, तो रसायन तो कहीं से आप रसायन अपने अलग से प्रोड्यूस करो, उसको आप मृत से क्यों ले रहे? तो मृत आदमी मृत, लेकिन वो जो जो ले रहे हैं जो एम्ब्रियो जो जो भी वो ले रहे हैं स्पर्म या सेल, हाँ तो वो जीवित ले रहे हैं, वो सेल जो है वो जीवित ले रहे हैं, क्योंकि जब ये आदमी मरा है उसको मरते वो ले रहे हैं, तो उसके अंदर जो सेल है वो लिविंग है, उसको लेकर के फिर इसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो आप शुरुआत में क्यों किसी आदमी के पीछे पड़े हो? आप तो केमिकल आप तो केमिकल से बनाने वाले हो, तो आप आदमी के संदर्भ में क्यों बात करते हो? आप कहीं से बनाओ ना अपना केमिकल, हवा में से बनाओ केमिकल और वहां से लेकर के उसको करो, और फिर उसको माँ के घर में क्यों डालते हो? अपनी टेस्ट ट्यूब में मिलाओ और टेस्ट ट्यूब में बनाओ, केमिकल से प्रारंभ करो, स्टार्ट नॉन लिविंग से करो। एक्चुअली वो कर भी नहीं सकते क्योंकि खुद तो लिविंग है। टेस्ट ट्यूब में मिला कौन रहा है, वो एक्सपेरिमेंट कर कौन रहा है, वो तो खुद लिविंग कर रहे हैं ना, तो कैसे वो नॉन लिविंग से प्रारंभ करेंगे? क्योंकि जो साइंटिस्ट है वो खुद तो लिविंग है, वो खुद तो जीवित जीवन शक्ति है। तो एक्चुअली अल्टीमेटली तो वो भी फिर भी वो डिस्प्रूव नहीं कर सकते कि प्रारंभ जीव से नहीं है, क्योंकि चाहे वो कुछ भी कर लें लेकिन उसका अंततः खुद कर रहे हैं ना, वो खुद तो लिविंग है, वो स्टार्टिंग तो लिविंग से हुआ। तो भगवान अलग जीवन शक्ति है, जीव अलग जीवन शक्ति है, लेकिन भगवान एक जीवन शक्ति चाहिए प्रारंभ में, स्टार्टिंग में एक जीवन शक्ति चाहिए जो किसी भी भौतिक तत्वों को मिलाने के लिए जरूरी है या उसमें जीव को प्रविष्ट करने के लिए जरूरी है। तो अगर साइंटिस्ट ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूस कर सकें जिसमें कि जीव आकर के एंटर होता है, जिसे वो कहें कि देखो जीव एंटर नहीं हुआ है, ये तो हमने भौतिक तत्व बनाए हैं, तो भी वो प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके दो, ये थोड़ा गहराई में है, इसके भी दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन है भाई देखो केमिकल से अपने आप मिलकर के ये हुआ, ये प्रूव हो गया कि सब आरंभ केमिकल से हुआ, लेकिन भागवत कह रहा है नहीं, वो सिचुएशन फेवरेबल प्रोड्यूस हुई जिसकी वजह से एक जीव उसमें प्रविष्ट हुआ। ठीक है, ये दो ऑप्शन है, अभी दोनों में से कौन सा अधिक तर्कसंगत है? जो केमिकल्स आप कह रहे हैं केमिकल्स मिलाए और उससे वो प्रारंभ हुआ, लेकिन वो केमिकल्स को मिलाने के लिए आवश्यकता पड़ी आपकी, अर्थात स्टार्टिंग पॉइंट तो फिर भी जीव रहा, तो इसलिए उस बात से ये प्रूव नहीं होता कि स्टार्टिंग में सब कुछ केमिकल था, क्योंकि यहां पर तो केमिकल आप मिला रहे हैं, साइंटिस्ट मिला रहा है जो जीवन जो व्यक्ति है। तो दूसरा जो ऑप्शन है कि कहीं भी जैसे कहीं भी केमिकल्स हैं, जो भी जब भी शरीर तैयार होता है एक जीव के रहने के लिए तब वहां पर जीव एंटर करता है। तो ये तो हर क्षण हो रहा है, एक माँ और बाप वो जो मिलकर के एक प्रकार का एक जो सिक्रीशंस होते हैं वो केमिकल्स हैं, लेकिन जब वो सिक्रीशंस मिलकर के फेवरेबल होते हैं एक जीव के एंटर होने पर, तब उसमें आत्मा प्रविष्ट होता है। तो वो तो हर क्षण हो रहा है, आप उसको इतने समय बाद बना रहे हैं, लेकिन वो तो हर व्यक्ति बना रहा है। इससे प्रभुपाद जी बोलते थे, जो चिकन है, जो एक मुर्गी है, वो साइंटिस्टों से ज्यादा अच्छी साइंटिस्ट है। क्योंकि साइंटिस्ट तो कह रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं केमिकल से एक जीव बनाने का, लेकिन अगर आप मान लें केमिकल से ही जीव बन रहा है, तो एक मुर्गी तो हर अपने जीवन में ना जाने कितनी बार केमिकल से जीवन बना रही है। तो अच्छा साइंटिस्ट तो मुर्गी है, वो तो बिना वैज्ञानिक लैब में जाए हुए, बिना पढ़े हुए, हर दिन ना जाने हर अपने जीवन में ना जाने कितने केमिकल्स में से जीवन उत्पन्न कर रहा है। और आप तो अभी तक एक भी केमिकल उत्पन्न नहीं, जीवन उत्पन्न नहीं कर पाए, लेकिन मुर्गी तो मुर्गी या हम सभी तो जीवन उत्पन्न करते हैं अपने जीवन में कितनी बार, लेकिन साइंटिस्ट नहीं कर पाते। तो वो तो हो ही रहा है, उसमें आपने कैसे प्रूव किया कि सब केमिकल से आए, क्योंकि वहां तो स्टार्टिंग तो आप हैं, आप कर रहे हैं। तो ऐसा तो आज भी हो रहा है, आज भी जीवन मिल करके वो कर रहा है, तो इसलिए वो उससे प्रूव नहीं करता। हरे कृष्ण, ग्रंथराज भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय।